ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ श्रुतात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण कुकर्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते हो तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल
लब्धिसार ग्रंथ के आधार से हम पंच लब्धि संबंधी यहाँ कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले यहाँ कर्मों की जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति उसकी हम कुछ जानकारी ले रहे हैं। नाम कर्म की बात देख रहे थे हम। 93 प्रकृति में से पिंड प्रकृति 14 है और वहां तक अपनी बात हुई थी। अब बात है अगुरु लघु की। वहां भी अगुरु लघुत्व गुण चल रहा है और यहाँ अगुरु लघु कर्म की बात चल रही है। नाम कर्म का ये भेद है तो उस गुण से इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने देखा है नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है। तो अगुरु लघु नाम का जो नाम कर्म है उसके उदय में ऐसे शरीर की रचना होती जो ना अति हेवी है भारी है और ना अति लघु यानी हल्का है। तो ये शरीर संबंधी बात है, इसको कहते हैं अगुरु लघु नाम कर्म। उपघात नाम कर्म ऐसा नाम कर्म है कि जिसके उदय में शरीर में ऐसे कुछ अवयव उत्पन्न होते हैं कि जो जीव का ही घात करे। ये बहुत लंबे के बाल है तो उसे कोई तकलीफ होती है। हमने ऐसे भी देखा ना जन्मते समय वो जो कॉर्ड होती है वो बालक के गले पर लपट जाती है और उसी से मृत्यु भी हो जाती है, या अन्य भी ऐसी कोई जो बातें। बहुत बड़ा पेट है तो उससे भी वो जीव की तकलीफ होकर वो स्वयं मर जाता है। तो ये उपघात है यानी उसको जीव को पीड़ा देने वाले अवयव। परघात नाम कर्म ये बात तीसरे नंबर के चैप्टर में चलेगी।
27 पृष्ठ,
हाँ पृष्ठ संख्या 27 गुजराती में, हिंदी में 30 नंबर। तो परघात नाम कर्म क्या है? तो परजीव के घात को यहाँ परघात कहा है, यानी इस कर्म के उदय में ऐसे अवयव उसके उत्पन्न होते कि जो परजीवों का घात करे। जैसे हम कहते ना बिच्छू के वो डंक में विष होता है, सांप के डाढ़ में जहर होता है, वाघ के जो नाखून है और दांत है वो ऐसे नुकीले होते हैं कि उससे वो अन्य जीवों को मारकर फाड़ कर खाता है। तो परजीवों को घात करने वाले अवयवों की उत्पत्ति होती है। इतने नहीं, अभी वृक्षों में भी कोई ऐसे जहरीले फल होते हैं, जहरीला रस होता है तो उससे भी अन्य जीव मर जाते हैं। अब उसके बाद है उच्छ्वास नाम कर्म, श्वासोच्छ्वास हम जो कहते हैं। अकेले नाक से श्वास लेना वो श्वासोच्छ्वास नहीं है, क्योंकि वनस्पतियों में भी वो होता है, यानी इनटेक एंड आउटपुट जो होता है वायुओं का, ऑक्सीजन का इनटेक और अन्य वायु जो बाहर फेंके जाते हैं उसको कहते हैं वो श्वासोच्छ्वास। यानी जो टिश्यू लेवल पर होगा उसको कहेंगे, क्योंकि जो हम श्वास और उच्छ्वास नाक से लेते हैं उसकी बात नहीं। वो बच्चा जो पेट में है वो तो नाक से तो कुछ उसके लंग से तो नहीं लेता है, फिर भी वहां भी उसका श्वासोच्छ्वास चलता है। क्योंकि ब्लड में से जो कोई सर्कुलेशन होता है, ये तो हम अभी साइंस की भाषा में बोल रहे हैं, परंतु ये सभी जीवों में जो पर्याप्त जीव है उसमें श्वासोच्छ्वास होता है। अपर्याप्त नाम करने वाले अभी आएगी बात, उनमें श्वासोच्छ्वास नहीं होता, बिल्कुल छोटी आयु होती है, श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। ऐसे जीवों को वो श्वासोच्छ्वास नाम कर्म नहीं पाए जाते। अब आगे चलकर देखेंगे आतप और उद्योत ये जोड़ी है। आतप में जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप यानी उष्णता सहित ऐसी जो प्रभा प्रभा यानी उसके कांति तेज होता है उसको आतप कहते हैं। तो वो किस में होते हैं? तो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों में। ये कौन से है? जो सूर्य बिंब सूर्य का विमान, ये हम जो एरोप्लेन में बैठते वो विमान नहीं भाई रमेश भाई सूर्य बिंब यानी जो ये जो सारे ज्योतिष के विमान कहलाते हैं। पृथ्वी किसे कहते हैं? फ्लैट थ्रू एंड थ्रू लोकाकाश के एक एंड से दूसरे एंड तक जो फैली उसको पृथ्वी कहेंगे। ये हमारी गोल पृथ्वी वो नजर के सामने नहीं लाना। यहाँ पारिभाषिक शब्द पृथ्वी किसे कहना? एज टू एज जो फैली उसको पृथ्वी कहना। और जो ग्रह वगैरह है ना ज्योतिष विमान जिसको कहने में आते अर्ध गोलाकार होते हैं। जैसे संतरा आप आधा कट करेंगे तो नीचे से गोलाकार ऊपर से फ्लैट, ऐसे ये जो होते हैं उसको यानी पीसेस तो उसको कहेंगे विमान। हमें जो दिखाई देते हैं वो तो ज्योतिष देवों के विमान है और उनमें वो ज्योतिष देव रहते हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं वहां उन विमानों में वे देवों का वहां रहने का स्थान है। तो ये जो सूर्य बिंब है सूर्य विमान है वो पृथ्वी का एक की रचना है, पृथ्वी के खंड है वो। तो वहां के जो जीव है पृथ्वी का एक जीव, पृथ्वी ही है काया जिनकी, उनका शरीर वो जो है ना पृथ्वी। अभी ये मिट्टी जो है हमें जो दिखाई देती है मिट्टी वो तो शरीर है उसका, वो तो पुद्गल है, परंतु वहां जो जीव रहता है पृथ्वी का एक जीव, षटकाई जीव कहते ना आप, कौन कौन से है बोलो? षटकाय नाम तो सुना है ना, अग्नि का है वायु का है वनस्पति का है जल का है। हाँ, अब का है कहो या जल का है कहो एक ही बात। हाँ, तेज का है कहो या अग्नि का है कहो एक ही बात है। तो ये जो पृथ्वी का एक जो है उनमें ये आतप नाम कर्म का उदय है। अग्नि का एक उनको नहीं होता, आतप नाम कर्म का उदय अग्नि का एक जीवन को नहीं है, पृथ्वी का एक को है और वो भी सूर्य बिंब वाले पृथ्वी का एक को। उद्योत नाम कर्म का जो उदय है वो चंद्रबिंब के जो पृथ्वी का एक है उनके होता है। और इनके अलावा हम देख रहे हैं वो जुगनू है, क्या कहते हैं आप आगिया, हाँ उसमें होता है। और कोई पंचेंद्रिय तिरियंचों में भी होता है, यानी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिरियंचन तक उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है। अब हम और देखते हैं आगे वाला जो तेजस कहाँ है यहाँ पर?
यहाँ पे नहीं है।
हाँ,
तेजस से आप
तेजस शरीर आप जो कहना चाहते हो तेजस शरीर, हाँ, वो अलग बात है। जो ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होता है या उसको तेजस शरीर का कार्य क्या है कि अन्न का पचन हो जाए शरीर में उष्णता उत्पन्न हो तो उसको वो तेजस शरीर या तेजस काय कहते हैं, वो अलग बात है। औदारिक शरीर है कारमान शरीर है वैसा वो तेजस शरीर है। और इस किसकी बात है? ये नाम कर्म की बात चल रही है। इसके उदय में शरीर में वो बातें बन जाती है। जैसे वो पृथ्वी काया है उसकी तो ऐसी काया है कि पृथ्वी होते हुए भी उसमें वो आतप है। आतप यानी क्या देखा हमने? उष्णतायुक्त प्रभाव। देखो हम देखते हैं ना यहाँ पर जीव मर जाता है तो क्या लेके जाता है साथ में? तेजस शरीर और कारमान शरीर चला जाता है। तो आप तो डॉक्टर है आपने देखा होगा क्या होता है बॉडी कैसी लगती है? कोल्ड एकदम। हाँ, अभी जीता आदमी अलग उसका टेम्परेचर जो कुछ होगा और एकदम कोल्ड है तो वहां का तेजस शरीर नहीं रहा उसमें। ये बॉडी का अपना स्पर्श रस गंध वर्ण तो है ही उसमें क्योंकि स्पर्श नाम कर्म भी चल रहा है ना, उसका अपना भी वहां स्पर्श है परंतु तेजस का और अलग कार्य चलता है उसमें। तो उसमें विशिष्ट कांति भी उत्पन्न होती है, विशिष्ट उष्णता भी होती है या जो कोई अन्न का पचन आदि जो कार्य चलते हैं वो सब तेजस शरीर के कार्य कहलाते हैं।
तेजस शरीर तेजस वर्गना से
हाँ, और वो तेजस वर्गना से बनी हुई है। ये नाम कर्म की बात चल रही है, ये कारमान वर्गना से और इसके उदय में इसके फलस्वरूप उस शरीर में ये बातें बनती है। औदारिक शरीर जो है पृथ्वी काय क्या है? औदारिक शरीर है। और उसमें ये आतप नाम कर्म के उदय से उसमें उष्णता वाला शरीर उत्पन्न होता है जो सूर्य बिंब का होता है। अब आगे आतप और उद्योत ये शुभ नाम कर्म है और अग्नि का एक और वायु का एक सबसे जिसको कहेंगे ना उनको कोई शुभ नाम कर्म का उदय नहीं होता, वो सब अशुभ में अशुभ पर्याय बताई है। ये निगोद से भी जीव निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जा सकता है उसी पर्याय में। अग्नि का और वायु का एक तो ऐसे है कि वहां मरकर वहां से कोई जीव यानी देव में से मरकर वहां कोई नहीं जा सकता, और कोई मनुष्य गति जिसने पूर्व में बांधी है ऐसा जीव अग्नि का एक में चला जाए तो मनुष्य गति का भी वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती, उद्वेल ना हो जाते, तिर्यंश गति में रूपांतरित हो जाती। यानी ऐसे वो बहुत हीन प्रकार की पर्याय कहने में आती है। तो उनके ये आतप और उद्योत दोनों ही नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी हम शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म की लिस्ट देखेंगे उसमें इसको शुभ नाम कर्म में डाला है। अब आगे की हम देखेंगे, अभी जोड़ी जोड़ी ध्यान में रखने योग्य जो है त्रस स्थावर बादर और सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त प्रत्येक और साधारण, ये चार युगल यानी चार जोड़ी है। तो हमें पता है त्रस क्यों किसको कहते हैं हम त्रस
नाम कर्म का,
हाँ जिसको त्रस नाम कर्म का उदय है उन जीवों को त्रस कहते हैं। वो त्रस कौन कौन से है, द्विइंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेन्द्रिय सभी त्रस है। अरिहंत भगवान क्या है, हाँ इतने कमजोर क्यों हो गया है, हाँ त्रस है कि स्थावर है, हाँ त्रस है ना, जोर से कहो ना, उनको त्रस कहने में वो जीभ नहीं उपड़ती क्यों वो पंचेंद्रिय जीव है ना, अभी वो तो शरीरधारी है तो उनको पंचेंद्रिय के उनका ग्रुप कौन सा होगा, त्रस जीव है, वे पंचेंद्रिय है, उनके भी उसका नाम कर्म का उदय चल रहा है त्रस नाम कर्म का, अरियंतों को भी। और जिनको स्थावर नाम कर्म का उदय है ऐसे कौन होता है, वो पांच प्रकार के स्थावर, अग्नि का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक वगैरह। हाँ
नाम कर्म उनको नहीं है,
नाम कर्म नहीं है किसको, सिद्धों की बात नहीं, अरिहंतों की बात, अरिहंतों सिद्धों को तो कुछ नहीं है ना, वो त्रस है ना स्थावर है, वो तो शरीर रहित है, कर्म रहित और शरीर रहित हो गए। तो त्रस और स्थावर देखे हमने, बादर और सूक्ष्म, बादर नाम कर्म के उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होता है उसको बादर यानी स्थूल होता है, यानी वो तो किसी के आधार से रहते वो जीव, और थ्रू एंड थ्रू पास नहीं होते, वो रोके जाते हैं और उनका शरीर भी अन्य को रोकता है, उसको कहते हैं बादर। और सूक्ष्म जीव शरीर ऐसा है कि वो सूक्ष्म प्रकार के पुद्गल परमाणुओं का वहां ग्रहण है और वो थ्रू एंड थ्रू भी चले जाए, जैसे हम कांच में से लाइट आती है या लोहे में से आप देखेंगे तो कुछ रेज अल्ट्रा जो कुछ है वो भी चले जाएंगे उसमें से, हम देखते ना एक्स रेज है तो दीवार में से भी चले आएंगे, लाइट तो नहीं आ रही मगर वो एक्स रेज चले जाएंगे, और भी जो कोई अन्य अन्य जो रेडिएशन जो है अन्य जो रेज होते हैं वो तो जा सकते हैं, वो पुद्गल होते हुए भी जा सकते हैं। ऐसा जो कोई सूक्ष्म परिणमन वाला है वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं, वो ना अग्नि से जलते हैं ना पानी से गलते हैं। अब आगे पर्याप्त और अपर्याप्त, तो जिनकी नियम से पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है, क्यों होने वाली है, क्योंकि उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा है। और जिन जीवों की पर्याप्ति शुरू तो हो जाती है परंतु एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है उसके पहले ही मरण हो जाता है नियम से, क्यों, क्योंकि उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा है। तो किसी को पर्याप्त का उदय चलता है किसी को अपर्याप्त का, ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने वैसे ही कर्म बांध के वो आए हैं, क्यों बांधे हैं, तो ऐसे ही खोटे परिणाम किए तो उस काल में उनके अपर्याप्त नाम कर्म का बंध हुआ। ये सारे ही जो जैसी पर्याय मिलनी है ना वैसे उसके, कोई एकेंद्रिय में जन्मने वाला है तो उसको एकेंद्रिय का बंध होगा, एकेंद्रिय जाति का, तिर्यंच गति का बंध होगा, और उस समय स्थावर नाम कर्म का बंध होगा, उस समय वैसे औदारिक शरीर का बंध होगा, अंगोपांग का बंध नहीं होगा, तो तो वो सारा जो पैकेज है वहां जाने के लिए आपकी पैकेज टूर होती है ना, आजकल हॉस्पिटल में भी पैकेज होता है, मालूम है ना आपको कि यहाँ नहीं चलता,
नहीं
चलता वो, यह होता है आपका हार्ट ऑपरेशन करना है, किसी का बाईपास करना है, तो उसके लिए भी पैकेज देते हैं। क्या ये 8 दिन का होगा, 8 दिन के बाद वो डिस्चार्ज के बाद कुछ होगा तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपके पैकेज में वो नहीं है, दोबारा एडमिट हो जाओ, घर जाओ और फिर एडमिट हो जाओ अच्छा है हाँ पैकेज टूर तो होती है ना,
पैकेज टूर होती है,
ब्लड टेस्ट कराओ
जो कुछ है। तो जहाँ अभी अभी किसी ने देवगति का बंध किया है तो देवगति का बंध करने वाले को उस गति के अनुसार बाकी सब प्रकृतियां वैसे बंधेगी। नाम कर्म में ऐसा होता है, नाम कर्म जो मनुष्य गति बांधने वाला है तो उसके साथ वैसे वैसे सारी अन्य प्रकृतियां बंधेगी। वो पंचेंद्रिय जाति को बांधेगा, वो पर्याप्त नाम कर्म, अभी देवगति में जाने वाले तो सारे पर्याप्त को ही बांधेंगे, पर्याप्त नाम कर्म, बादर नाम कर्म होगा, स्त्रस नाम कर्म होगा, उसके लगते हुए सभी नाम कर्म उसके साथ साथ बंधेंगे। अब आगे बढ़ते हम, प्रत्येक और साधारण, ये सभी जीव तो प्रत्येक शरीर ही है, एक शरीर और एक उसका स्वामी जीव, एक्सेप्ट वनस्पति में दोनों ही भेद होते हैं, प्रत्येक भी होते और साधारण भी होते। साधारण कहो या निगोद कहो एक ही बात है, निगोद नाम तो हमने सुना है, अभी वो सुबह बात आई थी ना, आलू या प्याज के एक टुकड़े में इतने होते हैं देह, तो एक एक देह में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, शरीर कॉमन, आहार कॉमन, श्वासोश्वास कॉमन, एक साथ जन्मते हैं एक साथ मरते हैं, यानी लाइफ स्पैन भी उतना ही, पर्याप्त हो गए तो सभी पर्याप्त एक साथ यहाँ जन्मेंगे, अपर्याप्त हो तो अपर्याप्त एक साथ जन्मेंगे, क्योंकि पर्याप्त तो श्वासोश्वास करेंगे, अपर्याप्त वो श्वासोश्वास नहीं करेंगे, तो ये सब कॉमन है, उनको कहेंगे साधारण या निगोर। तो ऐसा जिसने नाम कर्म बांधा है वो उस पर्याय में जाकर जन्मेगा। अब स्थिर अस्थिर, ये जो शरीर के धातु कहलाते हैं, सप्त धातु आपने सुना होगा, या उदारिक शरीर सप्त धातु वाला होता है, रस यानी लिम्फ, रुधिर यानी ब्लड, मांस, मेद, हड्डी, मीजी यानी मज्जा, शुक्र, ये जो धातु कहलाते हैं वो क्या, पहले रस फिर उसमें से रुधिर, ये उसका मान लेते हैं हम एक 8-8 दिन के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है आगे आगे वाले धातु में। तो अपने रूप रहना वो स्थिर नाम कर्म का कार्य है, और उसका अन्य धातु रूप परिणमन होना वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। तो ये दोनों का ही उदय हर समय चलता है जीवों को, यानी धातु अपने रूप भी रहते हैं और अपना काल वो पूरा करके आगे वाले धातु रूप भी होते हैं। अब आगे देखेंगे हमें शुभ और अशुभ। शुभ नाम कर्म के उदय में शरीर के अवयव है वो, जिसको कहते हैं अच्छे दिखते हैं, मनोहर रमणीक दिखते हैं। अशुभ नाम कर्म के उदय में वो अच्छे नहीं दिखते। सुभग दुर्भग में, सुभग में अन्य जीव उस जीव से प्रीति करते हैं और दुर्भग में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम देखते हैं उसके अवयव वाइज देखेंगे तो अच्छा है, फिर भी लोग उससे प्रीति नहीं करते। सुस्वर और दुस्वर, ये स्वर नाम कर्म के उदय में ऐसी आवाज है कि वो जो हम कहते हैं मीठी आवाज सुस्वर है, और दुस्वर आदेय अनादेय में, आदेय ने वो शरीर में जो कांति होती है, प्रभा होती है, वो आदेय नाम कर्म के उदय से होती है, और प्रभा रहित शरीर है वो अनादेय नाम कर्म के उदय से होती है। ये यश कीर्ति और अयश कीर्ति, यानी जीवों का यश हो जाना वो यश कीर्ति का उदय कहलाता है, और अयश कीर्ति के उदय में वो भले उसके गुण संपन्न होते हुए भी उसका अयश हो जाता है। देखो ये एकेंद्रियों को भी यश कीर्ति का उदय हो सकता है, हमारा थोड़ा बहुत यश हो जाए तो हम बहुत अपने को बड़ा मानते हैं। निर्माण नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म ने अवयवों की जो उत्पत्ति होती है वो निर्माण नाम कर्म के उदय में होती है, तो उसमें तो स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण, जो अवयव जिस स्थान में है, जैसे अभी हमें हमारी आंखें तो ऐसे चेहरे के सामने है, और ये मछली की आंखें कहाँ होती है, और वो डेढ़ का क्या मेंढक, उसकी आंखें कहाँ होती है। तो विशिष्ट जगह पर विशिष्ट अवयवों की उत्पत्ति होना वो स्थान निर्माण का कार्य, और प्रमाण निर्माण में विशिष्ट प्रमाण में उतनी संख्या में हो जाना, उसको कहेंगे प्रमाण। जैसे हमें दो आंखें हैं, अब तीसरी आंख आ जाए तो ये जो प्रमाण है दो आंखों का, इस तरह से उस वो प्रमाण निर्माण का कार्य। तीर्थंकर नाम कर्म में देखिए, तीर्थंकर नाम कर्म जो बांधता है कौन बांधता है, तो सम्य दृष्टि जीव, सभी सम्य दृष्टि नहीं बांधते, कोई बांधेगा। और जब उसका उदय आता है, उदय आता है तेरहवें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने पर, तब उसको वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, तो दिव्य ध्वनि खिरना, समोचरण की रचना होना आदि उसके उदय में बातें होती है। ये सब हमने नाम कर्म के जो उत्तर भेद है उसको देखा। अभी जरा देखते हैं तीर्थंकर नाम कर्म जहाँ लिखा है उसके बाद का पैराग्राफ मिला सबको। नाम कर्म की इन 93 प्रकृति का वर्णन पढ़कर तुम कौन सी प्रकृति बांधने का विचार कर रही हो, बोलो बेन। हाँ कोई कोई बहुत अच्छा, अन्य नहीं तो कम से कम तीर्थंकर प्रकृति तो बांधना योग्य है कि नहीं, इस बात का निर्णय पहले में पहले होना चाहिए। क्योंकि हम ये इतनी इतनी प्रकृतियों का ऐसा ऐसा कार्य देखते हैं, हाँ ये अच्छी है ये अच्छी है, ये नहीं बांधना है हम कि ये बांधना है, ऐसा मन में विचार आता है ना कि हम ऐसे कहीं से परिणाम रखेंगे तो अच्छी प्रकृति बनेगी। ये आयु के बारे में कल हुआ था कि नहीं हुआ। तो कहते हैं इन सम प्रकृतियों के नाम मालूम न हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बात निर्णय पूर्वक जानना आवश्यक है। किसी ने बताया इसलिए नहीं कि कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है, तो कर्म तो उसमें से छूटने योग्य है, बांधने योग्य क्योंकि बंधन तो योग्य है ही नहीं है। भले बंधन चल रहा है, भले शुभाशुभ हो रहे हैं, परंतु निर्णय क्या होना चाहिए, इनसे छूटना योग्य है। क्या कहा, पुण्य छोड़ने योग्य है, ये पहले निर्णय होना चाहिए। कर्म तो पुद्गल है, उसको हम कैसे छोड़ेंगे, तो उसके कारण रूप जो शुभाशुभ भाव है वो छोड़ने, तो छोड़ने योग्य तो कैसे छोड़ेंगे हम, तो अपने शुद्ध भाव में रहना ही राग को छोड़ना है। क्यों, क्योंकि जब अपने में रहेंगे तो राग की उत्पत्ति नहीं होगी, वही उसका नाश कहलाता है। हम क्या चाहते हैं, नहीं नहीं हमें बहुत क्रोध आ रहा है या आता है हमेशा, तो पहले में पहले क्रोध को हमें कर्म करना चाहिए, तो उसके लिए हम उपाय करते हैं। तो किसको देखते रहे, क्रोध को, हाँ कितना कम हुआ उसकी डिग्री, तो क्रोध को देखते देखते क्रोध कभी नहीं कम हुआ। क्रोध नहीं तो मान, मान नहीं तो माया, कुछ ना कुछ चलता रहेगा वहां पर। तो यहाँ तो जो अपने त्रिकाली स्वभाव को जानता रहे तो वहां उस क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी, उसको कहेंगे उसका नाश होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने इतनी सारी लिस्ट देखी है तो उसमें से कुछ तो पुण्य प्रकृतियां हैं और कुछ पाप प्रकृतियां हैं। अभी हम आगे देखते हैं, इसकी तो हमने चर्चा दी की थी, बाकी हम आगे का टेबल देखते हैं। यहाँ तो 38 पृष्ठ है, आपके 3 पेजेस कम हो गए। हाँ 35, ये सब हमने देख लिया है, केवल टेबल देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कर्म के दो भेद किए हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म, मिला ज्योत्सना बेन। हाँ 35 पेज, उसमें ज्ञानावरण के अभी हमने देखे, मूल प्रकृति तो हमने 8 देखी थी, हरेक की कितनी कितनी, ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, मोहिनी की 28 है, अंतराय की 5 है, तो ये कुल 47 हुई घाती कर्म की, जो सभी पाप रूप ही है, देखा था ना हमने। अघाती की वेदनीय 2, आयु 4, नाम की 93 या 67, ये 67 का हिसाब कैसा किया, तो अभी हमने शरीर के 5, बंधन के 5 और संघात के 5 देखे, उसके बदले हम केवल शरीर कहेंगे, बंदर और संघात उसी में इंक्लूडेड, तो हमने वो 10 कम किए। अब स्पर्श के आठ, रस के पांच, ऐसे हमने अलग अलग किए थे, उसके बदले में अलग अलग देखते तो 20 हो जाते, और केवल स्पर्श रस गंध वर्ण इतना ही कहेंगे, चार ही कहेंगे, तो 20 में से चार ही लिए तो 16 वो कम हुए, और पहले हमने 10 कम किए थे, 26 कम हुए तो कितने गए,
93
के बदले 67 कहा, उसी में वो इंक्लूडेड है। ऐसा डिटेल कहेंगे तो टोटल 148 हो जाएगी। अगर हम उसको ये 10 और वो 16, 26 कम करेंगे तो 122 हो जाती है। गोत्र की दो, ये कुल 101 या दूसरा ऑप्शन हमने देखा था वो 75 होते हैं। तो घाती कर्म की सभी 47 प्रकृति अप्रशस्त ही है, और अघाती में दो भेद होते हैं, प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी, इसको भी हमने कल शाम को भी देखा था। तो देखो प्रशस्त में किस किस को लिया है, साता वेदनीय, शुभ आयु में 3 आयु लिए, शुभ नाम में 63 या 37 लिए, उसमें भी स्पर्शादि को हम 4 गिनेंगे, और बंधन संघात के बदले अकेले शरीर कहेंगे तो इतने हो जाते हैं, और उच्च गोत्र 1। और अप्रशस्त में असाता वेदनीय को लिया, अशुभ आयु में 1 नरकायु ही ली, अशुभ नाम में 50 और 34 लिए, और नीच गोत्र 1। देखो ये शुभ नाम 63 लिए और अशुभ नाम 50 लिए, कितने हुए,
153।
कुछ वहाँ गलती होगी,
अभी ये टेबल है ना वो 36 पर, वो बेड बर्थ बता रहे हैं,
अशुभ नाम में वहाँ गलती हो गई,
पीछे है नहीं, ठीक है पेज नहीं घुमाया था
मैंने, वो मिसप्रिंट है,
वो मिसप्रिंट, वो कर देना अपना 50 उसमें, अशुभ नाम में 50 कर देना,
जहाँ 40 लिखा गया है 4 की जगह 5 कर देंगे।
तो उनकी टोटल कितनी होती है, 63 और 50, 113 हो जाती, तो यहाँ तो कितने हैं अपने, 93 है, तो ऐसा क्यों, देखो देखो हमने ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, वो शुभ भी होते और अशुभ भी होते, तो दोनों ओर उसको लिया, दोनों ओर लेने से वो एक ओर लेते तो 20 कम हो जाते उसमें से, दोनों ओर लिया इसलिए वो बढ़ गए। अब हम आगे देखेंगे, आगे वाला टेबल जो है ना, नाम कर्म, ये बात समझ में आई, उषा बेन, हाँ देखो इसकी बात यहाँ लिखी, उसके नीचे पढ़ेंगे। इस तरह से 148 प्रकृति में 68 प्रकृति प्रशस्त है, और घाती अघाती का मिलाकर 47 और 53 हो गई ना, तो ये अगर आपका मिसप्रिंट जो 40 है वो तो 43 हो जाएगी, तो वो 53 होना चाहिए, 53 यानी 100 प्रकृति अप्रशस्त है। तुम कहोगी दोनों का जोड़ तो 168 होगा, प्रकृति तो आपने 148 बताई है, ख्याल है ना, कितना अभी यहाँ कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का, हाँ इसका मतलब है कि तुम ध्यान देकर पढ़ रही हो, अच्छी बात है, इनमें स्पर्शादि 20 प्रकृति दोनों ही में शामिल है, एक की ओर शुभ स्पर्श लिया और एक की ओर अशुभ स्पर्श लिया, तो 20 हमने एक बार गिने तो 93 प्रकृति होती है, अब यहाँ दोनों ओर लिया तो 20 और बढ़ गई, तो ये दोनों ओर शामिल है इसलिए वो इतना बढ़ गया। इन्हीं को 122 प्रकृति के हिसाब से कहना हो तो 42 प्रकृति प्रशस्त है, 122 क्यों हिसाब, बंधन संघात और वो 20 के बदले 4, तो 122 का हिसाब करेंगे तो 42 तो प्रशस्त हो गए और 84 प्रकृति अप्रशस्त, इसको तो हमने देख लिया है, इसी को डिटेल में वो शुभ और अशुभ कर्मों का, यहाँ नाम कर्म में जो शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है यहाँ उसकी डिटेल में ली है। जैसे मान लेते अभी हम गति में देव गति और मनुष्य गति शुभ है, तिर्यंच गति और नर गति अशुभ है, उसके गत्यानुपूर्वी भी उसके साथ ले लेना उसी नाम के।
कई जगह त्रियंश को भी शुभ में लिया है।
हाँ, आपका प्रश्न है कहीं कहीं त्रियंश को भी शुभ में लिया है। त्रियंश को नहीं लिया, त्रियंश आयु को लिया। देखना, हाँ देखना, अभी आपने जो शुभ अशुभ देखी ना अघाती कर्मों में, अभी जो हमने चार देखा था तो वहाँ त्रियंश आयु को शुभ लिया और यहाँ त्रियंश गति की बात है।
अच्छा,
त्रियंश गति ये अशुभ नाम कर्म है और त्रियंश आयु ये शुभ आयु है। हाँ, उसको शुभ आयु ऐसा है। देखो वो त्रियंश हो या मनुष्य या देव है, जब मंद कषाय के कारण वो लंबी आयु बनती है और तीव्र कषाय के कारण छोटी आयु बनती है। अब गति में ऐसा नहीं, ये त्रियंश गति क्यों बनती है तो कुटे पहले दूसरे गुण स्थान में त्रियंश गति बनती है। दूसरी बात यह है कि नारकी जीव वहां नहीं रहना चाहता, वो संयोगों से नफरत करता है, उस आयु नहीं चाहता। और बाकी तिरियंच हो या मनुष्य हो या देव हो, वो आयु छोड़ना नहीं चाहता।
गोलियां खाता।
अच्छा, गोलियां खाता है आयु। अब जाति में हमने देखा था एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीनद्रीय चतुरिंद्रीय अशुभ जाति है, अशुभ नाम कर्म है, और पंचेंद्रीय जाति है शुभ नाम कर्म है। गति जाति शरीर सभी पांचों शरीर वो शुभ कर्म है, तीनों अंगोपांग ये शुभ नाम कर्म है। उसी में उसके बंधन और संघात ले लेना। स्पर्श में हमने क्या देखा, स्पर्शादि यानी स्पर्श रस गंध वर्ण शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। अब संस्थान और सहनन में जो पहले नंबर का हमने देखा था वो शुभ लेना और अन्य जो पांच है वो अशुभ में ले लेना। अनुपूर्वी की तो बात हमने देखी थी, विहाय गति में उसके नाम ही है अलग अलग, प्रशस्त विहाय गति और अप्रशस्त विहाय गति। हमने जो चार देखे थे अगर लघु उपघात परघात उच्छ्वास, उसमें से उपघात है वो अप्रशस्त है और बाकी तीन है वो प्रशस्त है। आतप उद्योग दोनों ही प्रशस्त है। अब त्रस के हमने चार युगल देखे थे, त्रस स्थावर वगैरह वगैरह, उसमें से त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक ये शुभ है, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण ये अप्रशस्त है। स्थिर आदि जो जोड़िया देखी थी हमने, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ वगैरह, उसमें भी स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस कीर्ति ये शुभ प्रकृतियां है और अन्य जो है उसके अगेंस्ट वो अशुभ है। तीर्थंकर और निर्माण ये दोनों ही शुभ प्रकृतियां हैं। तो ये शुभ प्रकृतियों की इतनी लिस्ट यहां देने की क्या जरूरत थी? तो आगे जब अभी प्रकरण आएगा अपना देशना लब्धि प्रायोग लब्धि आदि, जीव जब तत्व विचार करता है तो उस काल में उसके वहां इतना ही कहेंगे साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का बंद होने लगेगा, विशुद्धि बढ़ेगी यानी इनका बंद होने लगेगा। तो ये कौन कौन सी प्रकृतियां हैं तब ये इतना समझना है, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है ये हमारे पास टेबल है, जब देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं ये देखना है। भाई करणान योग की सभी बातें ख्याल में नहीं रहती, जब हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भाषित होता है कि नहीं ये पहले में पहले लेना है, वो वी माइट नॉट रिप्रोड्यूस रिपीट इट, तो ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता, ऐसी बातें मन में नहीं रखना। बोलो आपका क्या प्रश्न है?
कुछ स्पर्श आदि वो शुभ और अशुभ में वो कैसे,
देखो
और उसको क्यों शुभ बोला है?
हाँ देखो, वो शुभ है इसलिए शुभ बोला है क्योंकि वो तो शुभ भावों से बनती है इसलिए शुभ कहा उसको, और ये जो उपघात जो है वो अशुभ भावों से बनती है, संकलेश परिणामों से बनती है, उसको अशुभ यानी पाप प्रकृति का, ये पुण्य, हाँ पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति है। और क्या आपने स्पर्शादि जो है जिसको हम कहते ना ये अच्छा नहीं स्पर्श, तो ऐसा शरीर की रचना क्यों हुई?
मगर
तो ये तो अशुभ स्पर्श नाम कर्म के उदय।
एक क्रोकोडाइल होती है उसकी पीठ कैसे होती?
जैसे मृदु हम बच्चे को स्पर्श करते हैं वो कैसा है, मुलायम है, हाँ तो वो शुभ कहेंगे। और कोई बहुत रफ ऐसी कोई होती है चीज, तो जिसका शरीर ऐसा रफ है तो उसको कहेंगे वो अशुभ नाम कर्म है, उसका उस संबंधी स्पर्श का अशुभ।
और ये
आधेय में वो कांति होती है, जैसे कोई काला भी है मगर तेज पुंज दिखता है वो अलग बात है, और आतप यानी वो सूर्य कैसा दिख रहा है अभी,
उष्णता
बहुत अधिक उष्णता है और उस सहित वो प्रभायणे तेज है, इतना सारा प्रकाश हो जाता है ना।
ये जब आधेय नाम कर्म बोल दिया तो उष्णता का प्रश्न नहीं,
उष्णता का प्रश्न नहीं हुआ, शरीर की कांति समझना। अभी हम आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ एक प्रश्न है कि इतना सारा कर्म की बातें जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि तिर्यंचो सम्यक दर्शन तो प्राप्त करते हैं, उनको तो कर्म के एक भी कर्म का नाम नहीं आता है, ना ही उनको कोई परिभाषा रटने पड़ती है, ना ही कोई प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, क्यों उनको सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? अरे नारकियों को होता है, तिर्यंचों को होता है, देवों को होता है, मनुष्यों को होता है, तो ये इतनी बातें जानने की क्या जरूरत है, हमको लगता है कि नहीं ये करना नहीं क्यों पड़े, ये सूक्ष्म बातें जानने की क्या जरूरत है, ये अनंत की बातें क्यों करते हो अर्षद भाई, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो हम पूछते हैं तिर्यंच कितनी रोटी खाता है रोज? एक भी नहीं खाता। अच्छा, थोड़ा घास भूस खाकर भी जी सकता है क्यों हा? और हमें तो रोज चेंज चाहिए, तभी हम नहीं प्रश्न पूछता है कि हमें इतना चेंज क्यों, हम भी रोज दो रोटी एक चपाती यानी एक दाल एक सब्जी खा सकते हैं, अरे वही की वही सब्जी भी नहीं चलेगी हमें डेली, वो नहीं चलेगी। हाँ, तो वहां तो हमें चेंज चाहिए क्यों, यानी दो रोटी से काम चलता है, दो जोड़ कपड़े से काम चलता है, छोटा अभी कोई निवारा है उससे काम चलता है, तो वहां तो हमें कोई लौकिक में तो प्रश्न नहीं पड़ता है कि इस सारे की क्या जरूरत है, प्रश्न कहाँ आता है जब पढ़ने की बात आती है तो ये पढ़ने की क्या जरूरत है,
शुभ कर्म का उदय है इसलिए।
तो देखिए ये तो हम जो जान रहे हैं वो सत्य बातें जान रहे हैं, तो सत्य जानने से ज्ञान में कुछ विकास हो रहा है क्या, कुछ उसके अधोगति हो रही है? ज्ञान का विकास हो रहा है, क्योंकि जो सच्चा है जो जिनेन्द्र भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा जाना है वो हम आगम के द्वारा जान रहे हैं, वो 100% सही है, सत्य है। देखो क्या हमारा इतना विश्वास है जितना हमारे डॉक्टर के ऊपर विश्वास है? आप खून की जांच करवाते हैं, आपकी ब्लड शुगर कितनी है? तो हमारी इतनी है। किसने देखी? हमें कभी नहीं प्रश्न उठता किसने देखी, क्योंकि हम वो खून तपासने के लिए देते हैं, डॉक्टर वो वहां चेकअप करता है, रिपोर्ट लिख के देता है, हमारे हाथ में वो प्रिंटेड आ जाता है, हमारे लिए वही आगम है ना आजकल, डॉक्टर्स की रिपोर्ट हमारा आगम है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भगवान मानते हैं और उसने जो लिख के दिया वो अपना आगम हो गया और हम 100% उसको फॉलो करते हैं, कितना विश्वास है उस ऊपर, इतनी शुगर आई, अरे बाप रे बढ़ गई है, अभी मुझे डाइट कंट्रोल करना है, ये शुगर नहीं खाना है, हाँ सब कुछ। तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर खड़ा रहो खड़े रहते, नीचे बैठ जाओ नीचे बैठते, आ करो जीभ बाहर निकालो, जैसे डॉक्टर बताता है वैसे करते, क्यों? शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लिया है, और वो शरीर का कुछ भला करने वाला है वो करता है कि नहीं वो बात अलग है, मान तो लिया है ना हमने। देखो वो तो रिपोर्ट बाय चांस दूसरा किसी का आपको आ भी जाएगा होता भी है ना, फिर भी हम उसको 100% सही मान लेते हैं और वैसा ही करते हैं। क्या आगम पर हमारा ऐसा विश्वास है? वहां तो क्वेश्चन मार्क लगता है ना, अपने मन में अभिप्राय अपना टटोल, हाँ ये किसने देखा है, यहाँ लिखा है तो ये किसने मन से लिखा होगा, भगवान ने, भगवान होता भी नहीं होता, किसने देखा है, एक किसने देखा है कि वहां सारी बातें चलती है। परंतु डॉक्टर की रिपोर्ट को कभी नहीं पूछते कि किसने देखा है, डॉक्टर को जाके पूछा है कभी कि आपने सही देखा है कि नहीं देखा, फिर से देखो जरा, ऐसा नहीं कहते कभी।
वो टेक्नीशियन देखता है।
वो भी टेक्नीशियन देखता है। देखो हम तीर्यंच को सम्यक दर्शन कैसे होता है आपका प्रश्न है ना? हाँ तो होता है, उसमें भी ऐसी बात है ना कि प्रथम ऑप्शन सम्यक, यानी वो अनादि का जो है वो हो सकता है, परंतु उसमें भी उनके भी जिन बिंब दर्शन से भी होता है, उसमें भी जो निमित्त बताए ना, या पूर्व भव में उसने देशना मिली है उसको, उस समय तो कार्य नहीं हुआ है और संगी पंचेंद्रिय है, तो अपने से वो विचार में चढ़ जाता है, यानी वो राग मेरे उससे भिन्न है, शरीर से मैं भिन्न हूँ, ऐसी बातें उसके ख्याल में आती है और वो विचारों में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो भी सकती है, क्योंकि वहां तो कोई उपदेश नहीं है, वहां तो कोई शास्त्र श्रवण नहीं है, परंतु पूर्व भव की देशना वहां काम कर सकती है। उसको पूरे वे शब्दों में तो याद नहीं होगा, शब्द तो उसके वहां तो कोई भाषा रूप से वहां कुछ कार्य नहीं है, परंतु उसके उसका एहसास हो जाता है। जैसे तिरियंचों में वात्सल्य होता है कि नहीं होता है, गाय को देखा है हमने बछड़े के प्रति कितनी प्रीति है, तो उसको प्रेम या वात्सल्य शब्द मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है शब्द? मालूम है? मैं क्या पूछ रही हूँ, वात्सल्य ये शब्द उसको मालूम है क्या? क्या उसका भाव मालूम है? उसको वात्सल्य का अनुभव है, उसको वात्सल्य लगता है बच्चों के प्रति, परंतु इसको वात्सल्य कहते हैं या क्या उसको पता है? नहीं है ना,
वो अपने को पता नहीं
है। तो हमें शब्द मालूम है और भाव नहीं है क्या? तो ऐसे जैसे वहां उसकी प्रतीति होती है, उस भाव का अनुभव है, अभी वो अभी वृक्षों को देख रहा है कोई तिर्यंच, वो लाल फूल है, पीले है, कुछ है, ये ग्रीनरी सब दिख रही है, तो उसको ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये हरा रंग है, ये पीला रंग है, वो नाम भले नहीं देगा, परंतु ये विशिष्ट यानी वो वर्ण दिख रहा है उसको, और उन दोनों में डिफरेंस है उसको ख्याल में आ रहा है ना, उसको वो नाम नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसकी वो भाषा नहीं है। जैसे हम उसको भाषा में उसका वर्णन करेंगे, हम राले में गए थे, वहां इतनी ग्रीनरी है, वहां इतने फूल है, ये इतने कलर के है, तो उसके तो ऐसी भाषा तो उसके पास नहीं है, परंतु क्या उसको सभी चीजों का ज्ञान है कि नहीं है? अभी यहाँ का कोई तीर्यंच ये सारे देख सकता है ना, और उसको उसके ज्ञान भी हो रहा है, उसमें जो कोई ग्रीनरी है, जो कुछ है, उसकी भाषा अलग, भाषा में मत उसको सोचो, हम बोलते हैं भाषा में एक्सप्रेस करते हैं, वैसे उनको भाषा में कुछ नहीं चल रहा है, शब्दों में कुछ नहीं चल रहा है, परंतु वो सभी का ज्ञान उसको उतना ही हो सकता है जितना हमें होता है, ख्याल है ना? वैसे ही उस जीव ने पहले सुनी हुई देशना है तो उसको वो काम कर सकती है। इसकी बातें आगे आने वाली है, देशना के संबंध प्रकरण में कौन से जीवों को कौन से निमित्त से कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, कहां क्या क्या निमित्त होते हैं, ये सभी बातें आएगी। अब यहां हम देखते हैं 43 पेज है यहाँ आप में, यानी चौथे क्रमांक के पत्र में दूसरा पेज
39।
हाँ, मुझे एक बात बताओ,
पेज 40 सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ,
उसके भी पहले वाला एक पैराग्राफ लेना उसी प्रकार। हमने यहाँ ऐसा लिखा है पहले उसके कि अभी हम दवा के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और मेडिसिन खाते हैं तो उसका फायदा होता है कि नहीं होता? पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट को मेडिसिन्स के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी और उसने वो ग्रहण की और उसको बुखार आया तो बुखार मिट गया, बराबर है? उसके मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसकी बीमारी ठीक हुई। उस डॉक्टर को उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, वो मेडिसिन किस केमिकल से बनी हुई है, वो पेट में जाने के बाद उसमें क्या रिएक्शंस होगी, वो कौन से ऑर्गन में जाएगी, कहाँ कैसा कार्य करेगी, वो किस तरह से शरीर के बाहर जाएगी, उसके साइड इफेक्ट क्या, ये सब उसको पता है। तो पता है और वो खुद बीमार हुआ तो क्या होगा? वो पता है इसलिए आराम होगा तो उसको भी गोली खानी पड़ेगी, तो उसको भी गोली खाने से ही आराम होगा, बात सही है ना? तब यहाँ उसी प्रकार मिला है पैराग्राफ। उसी प्रकार कोई जीव यदि कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता हो तो भी उसके सम्यक तो हो सकता है। प्रोवाइडेड क्या है, हाँ इतना जरूरी है उसे जिनेन्द्र कथित प्रयोजनभूत सात तत्व, ये अपने हुए थे लास्ट टाइम यहाँ पे आपने लिए थे ना जीवादि सात तत्व, जीव तत्व अजीव तत्व आश्रव बंध संबंधी जरा उसकी बात है, उसका जो का त्यों श्रद्धान, जो का त्यों ने जैसा उसका स्वरूप है वैसा श्रद्धान, जैसे राग है शुभ अशुभ भाव है उसका श्रद्धान कैसे होना चाहिए कि ये दुखकारी है और अपने से भिन्न है, ये विकार है इससे बंद होगा, ऐसा उसका श्रद्धान जो का त्यों श्रद्धान हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो। तिरियंचों को कैसा होता है इसका भी इसमें आया उत्तर, जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको कैसे होता है, पहले में पहले पहली कंडीशन क्या है, जिनेन्द्र कथित तत्व होने चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म के अपने अपने तत्व होते हैं, वो तो सांख्य मति है नैयायिक है वैशेषिक है जैमिनिक है, उनके अपने अपने 25-25 तत्व भी बताए, यहाँ पहली कंडीशन है जिनेन्द्र भगवान ने बताए होने चाहिए, वो जो प्रयोजनभूत सात तत्व बताए। तीसरी बात, स्वयं उसका निर्णय होना चाहिए, परीक्षा द्वारा निर्णय करना चाहिए, आपने बताया हमने रट लिए और बस हमने मान लिए वो नहीं चलेगा, स्व पर का भेद ज्ञान हो, ये स्व कौन है पर क्या है, मैं ज्ञान दर्शन में मैं स्व हूं और ये शरीर से लेकर अन्य सब पर है, इसका भेद ज्ञान, अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो, यथार्थ जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा भाषित हो, कैसे ज्ञानमय भाषित हो, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में, क्या कहते हैं कर्म का जो बंध है और उसके फल में प्राप्त सामग्री का अर्थ क्या है, हमने देखे थे कर्म के उदय में क्या क्या होती है, तो बाह्य संयोग की प्राप्ति होती है, शरीर की रचना होती है, उच्च नीच गोत्र बनता है, ये आयु कर्म जो कोई चल रहा है, और बाकी जो ज्ञान की हीनता हमने देखी थी कल दो खाते खोले थे, तो कर्म के उदय में जो कोई बातें बनती है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि न हो, अब चारित्र मोहनी के उदय में शुभ शुभ भाव होता है, ऐसा हम लेंगे कर्म के उदय में होने वाले भाव, तो शुभ भाव में भी कर्तृत्व बुद्धि न हो, क्यों, अरे यहाँ मंदिर इतना बना हमने शुभ भाव किया तभी बना कि नहीं बना, ये हमको ऐसी आइडिया आई थी, वो आर्किटेक्ट ने अपने मन में पहले ऐसा वो प्लान बनाया था तभी वो उसकी रचना हुई कि नहीं हुई, तो उसका कर्तृत्व पना आ गया, तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव न हो, बुद्धि न हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि न हो, शरीर मैं हूं या मेरा है, राग रूप मैं हूं या मैं करता हूं वो करने योग्य है, ऐसी जब तक बुद्धि है तब तक उसको सम्यक तो नहीं हो सकता, और ये ऐसी बुद्धि न हो तब उसको सम्यक्त्व का अधिकारी है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, ये तो ये हमने देखे थे कि सत्य जानने से तो हमारे ज्ञान का विकास ही हो रहा है, अब हम उसके बाद का तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, बेटियों मोक्ष का मार्ग मिला, मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल सुलभ सहज और सुखकर है, सुखमय है मोक्ष, अगर अनंत सुखमय है तो उसका मार्ग दुखमय नहीं हो सकता, लोग क्या कहते हैं अभी थोड़ा दुख सहन करो फिर बाद में सुख होगा तो जो सुख का मार्ग सुख है उसका मार्ग भी सुख में होना चाहिए, थोड़ा तो सुख का अनुभव होना चाहिए, मोक्ष अनंत सुख है तो उसको जो मार्ग है मोक्ष मार्ग वहां थोड़ा तो सुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो लोग क्या समझते अरे मुनि जीवन तो कितना दुखमय है, मुनि बिचारे, कौन बिचारे मुनि क्योंकि ये तो गृहस्थ है ना, तो लगता है उसका मैं सुखी हूं और वो बिचारे मुनिराज जंगल में निर्वस्त्र दिगंबर काया से घूम रहे हैं, तो उनको बिचारा ठहराता है और ये स्वयं राग में जल रहा है, मतलब उसको ही उनको बेचारा कह रहे हैं। तो कहते हैं मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल है। देखो जीव की पर्याय उसके अपने में से होती है और उसकी सारी योग्यता उसमें पड़ी है, उसके लिए उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक्सेप्ट करे इतनी बात है। और ये सारा बताया है मार्ग, उस पर विश्वास होना और बाकी तो सभी सुलभ ही सुलभ है, सुख करे सहज है, क्योंकि ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ऐसी है कि जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट करे, ऐसी जीव में ही योग्यता पड़ी। परंतु हम पर में कुछ कर सकता हूं ये इतनी मान्यता है और हम करना चाहते हैं और बार बार उसी में माथा मारते रहते हैं, तो इसलिए ये सुलभ होते हुए भी आज तक नहीं हुआ है। तो सरल है, सुलभ है, सहज है और सुखकर है, परंतु जीव का उस पर विश्वास ही नहीं है, यही रहस्य है। कल हमने बात की थी ना, डॉक्टर के पास जाता है और उसने इसको कोई दवा की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी होता है? तो ये भी मार्ग इतना सरल है, तो लोग ऐसा होता है थोड़ा ही, अब आत्मात्मा करने से कुछ कुछ करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो कुछ क्रियाएं करना चाहता है, यानी मान्यता में पहले उसने माना है कि शुभ करने से मेरा ये भाव प्रकट होगा, वितरागता प्रकट होगी। मान्यता जब तक नहीं सुधरेगी तो किसी क्रिया से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे कुछ क्रिया करना चाहिए तभी मुझे मोक्ष मार्ग हासिल होगा, ऐसी भ्रांति या ऐसी कल्पना हो गई उसे, क्या कुछ क्रिया करने से मुझे मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। कैसी क्रिया? जैसे आपने बोल रहे थे ना, वो तो एक आए थे बुजुर्ग हमारे घर में 87 इयर्स के, तो उन्होंने बोला था मुझे किसी ने सम्यक दर्शन दिलाने का वादा किया है, तो मैं क्या करता हूँ रोज पौने घंटे ओम नमः सिद्धेभ्य कहता हूँ। मैंने कहा चाचा जी आपको कितने साल से? मैं 4 साल से कर रहा हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं हासिल हुआ। उन्होंने पूछा सिद्धों का स्वरूप जानते हो? कि उसकी क्या जरूरत है, मैं नहीं जानता। सरल थे, बहुत सरल थे, तभी तो आए थे कि मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ी आपकी, मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग बात आप कहना चाहते हैं, हमको कुछ मार्गदर्शन करो। मैंने बोला सिद्धों का स्वरूप नहीं जान रहे हैं और आप केवल उसका नाम लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातें उनसे हुई, 1.5 घंटा चर्चा हुई थी उनसे, यानी भोले जीव ऐसा मानते ना कुछ क्रिया करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो हम बिल्कुल ऐसे स्थिर आसन से बैठेंगे और बिल्कुल ऐसे नाम जपेंगे तो हमको कुछ प्राप्ति होगी, तो कुछ क्रिया करने से होगा, ऐसी उनकी भ्रांति चलती है। शुभ भाव और देहादिक की क्रिया में ही इस जीव ने धर्म माना है। बचपन में हम क्या करते थे? पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, 10 लक्षण में 200 दिन वहां जाके पूजा करते थे, कुछ यात्रा करते थे, कई उपवास करते थे और हम मानते थे हम कुछ धर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ तत्व नहीं सुनते थे, वहां भी 7 तत्वों के नाम रटे थे, 6 द्रव्यों के नाम रटे थे, सब कुछ चलता था, फिर भी उसकी जो कुछ वहां की जो यानी उसकी तत्व की जो गहराई है ना, उसका पता नहीं था। तो इसी में हमने धर्म किया ऐसा मान लेते, परंतु शुभाशुभ भाव रहित, देखो शुभाशुभ भाव चलते हैं उस काल में भी, शुभाशुभ भाव रहित त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूपी मैं हूं, इस बात का इसे स्वीकार नहीं है। क्या कहना चाहते? तो शुभाशुभ रहित हम जाएंगे तभी तो हो जाएगा, नहीं वो उसकी बात नहीं है। अभी वर्तमान काल में शुभाशुभ भाव है पर्याय में, परंतु उसको गौण करके हमारा जो त्रिकाली स्वभाव है सिद्ध जैसा, उसका लक्ष्य करने से पर्याय में वैसी वितरागता प्रकट होती है और शुभाशुभ भाव यानी अशुभ भाव पहले घटते हैं, फिर शुभ भाव भी घटने शुरू होते हैं। परंतु पहले में पहले अभिप्राय में क्या लेना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। शुभराग के होते हुए भी पहले में पहले क्या लेना है कि ये मेरा स्वरूप नहीं। देखिए हम थोड़ा उदाहरण लेके, कपड़ा मलिन है, मैल ऊपर से लगा है ना, तो मलिन कपड़े में हमें श्रद्धा है कि कपड़ा भिन्न है और मैल भिन्न है, ऐसी श्रद्धा हुए बिना आगे की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि पता है ज्ञान भी है, ये मलिनता है, इसका ज्ञान है पहले में पहले। अगर वो मलिन है ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको धोएंगे क्यों, स्वच्छ करेंगे क्यों? तो ज्ञान तो हो गया कि कपड़ा मलिन है। मलिन अवस्था में कपड़ा भिन्न है और मलिन मैल भिन्न है और उससे भिन्न किया जा सकता है, ऐसी श्रद्धा है तभी आगे बढ़ेगा जीव और उसको वो साफ करने का प्रोसेस करेगा। ऐसे ही अभी रागी द्वेषी अवस्था है ऐसा ज्ञान करना है, वो मेरे में है, मेरे से हो रही है, मेरा अपराध है, पहले ज्ञान ने स्वीकार किया। अब श्रद्धा में क्या लेना है, मेरा जो त्रिकाली स्वभाव है वो इससे भिन्न है, और सिद्धों में ये विकार नहीं है, तो जीव से विकार अलग हो सकता है और जीव का स्वभाव है वो परिपूर्ण पर्याय में प्रकट हो सकता है, जैसे कपड़ा स्वच्छ हो सकता है, ऐसी श्रद्धा है तब जाके उसने किया। तो वो कपड़े के लिए तो हम, वो तो उदाहरण है, तो फिर उसको साबुन लगाओ, पानी लगाओ, जो कुछ करना है वो करो, यह हम और कुछ नहीं करना है, बस ये त्रिकाली जो शुद्ध स्वभाव है उसको स्वीकारना है, उसको श्रद्धा में लेना है और उसी में ज्ञान में उसको केंद्रित करना है और उसी से ये पर्याय वाली अशुद्धता निकलने वाली है। तो ये बात यहाँ कहते हैं, इसका स्वीकार करना चाहिए। देहादि की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया है, जीव उसे कर ही नहीं सकता। कल हमने देखा था प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसके अपने में होती है, ये द्रव्य गुण पर्याय देखा है ना, पर्याय कहाँ पर होती है, द्रव्य के पूरे भाग में होती है, द्रव्य के बाहर होती ही नहीं है और ना ही कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय कर सकता है। शुभाशुभ राग तो विभाव है, स्वभाव नहीं, जीव के स्वभाव से विरुद्ध भाव है, तो फिर विभाव करके इसके स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होगी? इसका अर्थ क्या, राग करते करते वितरागता कैसे प्रकट होगी? राग ये अशुद्ध भाव है, हमने कल देखा था दो भेद किए ना, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। राग में शुभ हो या अशुभ हो दोनों ही अशुद्ध भाव है, तो अशुद्ध करने से शुद्ध कैसे हो सकता है? शुद्ध करने से शुद्ध होगा, तो स्वभाव जो परिपूर्ण शुद्ध है उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होगी। तो स्वभाव कहाँ से लाना जाना है कि है ही अनादि से, अनादि से शुद्ध ही है। अभी क्या करना रहा, ये उपयोग नाम की पर्याय ज्ञान ना जानना जानना ये चल रही है कि उसको कहीं भगवान के पास से लाना है, अभी वर मांगना है कि हमको ज्ञान दो करके, ये जानने का कार्य भी चल रहा है, यानी स्वभाव भी अपने पास है, जानने की पर्याय भी हर समय नई नई उत्पन्न हो रही है, वो भी अपने पास है, कहीं जाना नहीं लाने को। अब कार्य क्या करना है, उसको मैं त्रिकाली स्वभाव शुद्ध हूं ऐसा जानकर उसी में स्थिर होना है, उपयोग वहां लगाना है। तो इतना सरल मार्ग है, पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपने में सब कुछ मौजूद है, उसको स्वीकार करना है। तो इसी से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रारंभ होगा। तो जब ऐसे कार्य प्रारंभ होता है, जब हम विचार में लेते हैं तो कौन कौन सी बातें बनेगी, इसकी चर्चा भी आगामी प्रवचन में चलेगी। बोलो 2400 भगवान की जय।